أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے. آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو پیش کرنا ہے وہ سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے ہر خطیب کے لیے، ہر درس دینے والے کے لیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھے، مطالعہ کرے. چونکہ ہماری اس گفتگو کا محور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو ہم فقط انہی نکات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو اس کتاب میں ذکر ہوئے ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی چیز یہاں پر ذکر کی ہے وہ عبادت امام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ کربلا کے بعد ان کی امامت کا آغاز ہوا، بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ظاہری طور پر، تو انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت زیادہ شکنجے میں رکھا، بہت زیادہ ان پر سختیاں کی، ان پر نظارت رکھی، ان کو تقریباً یوں سمجھیں کہ نظر بند کر کے رکھا. تو ایسے حالات کے جس میں ایک معصوم امام اپنی اجتماعی ضرورتوں کو، اپنی اجتماعی سوچ کو، اپنی اجتماعی زندگی کو بیان نہیں کرتا، عمل نہیں کر سکتا، اجتماعی سوچ پہنچا نہیں سکتا دوسروں تک، تو یہاں پھر ایک یہی پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ امام عبادت کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی کرے. امام نے اپنی زندگی میں اتنی عبادت کی ہے کہ مخالفین نے بھی جب امام کی اس سیرت کو دیکھا تو ان کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا. زین العابدین یعنی عابدین، عبادت گزاروں کی زینت. آئمہ کے القاب جو مشہور ہوتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہمارا زمانہ کس چیز کا اقتضا کر رہا ہے. تو جیسا کہ عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بہت سخت تھا اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اجتماعی فعالیت کریں، تو امام نے فردی عبادت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرنا شروع کی. ویسے بھی امام جو معصوم ہوتا ہے اس کی عبادت جو ہے وہ تمام کائنات سے افضل ہوتی ہے، وہ عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن یہ عبادت کا عنصر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا. اسی وجہ سے فقط امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا. امام کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کو خدا کے علاوہ کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی. شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک دن ایک رات عبادت کر رہے تھے امام. امام کے اولاد میں سے ایک بچہ کسی وجہ سے گرا اور اسے چوٹ لگ گئی، اس کا کوئی عضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب ذہن میں نہیں ہے مثلاً وہ عضو ہاتھ ٹوٹا یا کیا چیز، بہرحال یہ کہا گیا کہ بدن کا ایک عضو ان کا ٹوٹ گیا. शोर शराबा शुरू हो गया घर के अंदर। अहले खाना ने कोशिश की कि इमाम को ज़हमत ना दें, उनको ये खबर ना पहुंचाएं, बल्कि ख़ुद उन्होंने कोशिश की कि इस मुश्किल को हल करें। वो उनको तबीब के पास ले गए, लेकिन चूंकि बच्चा था और उसको चोट लगी थी और चोट भी ऐसी कि एक उज्व जो है वो टूट गया था, कराह रहा था बहुत ज़्यादा, चीखों पुकार थी उस बच्चे की, घर के अंदर गूंज रही थी। अहले खाना जब उसको तबीब के पास ले गए और तबीब ने मरहम पट्टी लगाई, उसके उस टूटे हुए उज्व को दुरुस्त किया, तो सुबह के वक्त जब इमाम बेदार हुए और अहले खाना जब बेदार हुए, तो इमाम ने देखा कि एक बच्चे को पट्टी लगी हुई है। तो इमाम ने हैरत से पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो अहले खाना ने तमाम माजरा बयान किया। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप देखें कि उस दौर में घर इतने बड़े नहीं होते थे, इमाम उसी घर के अंदर एक कमरे के अंदर इबादत कर रहे हैं, बच्चे के बाजू या मसलन कोई और उज़ टूट गया है, वो चीखो पुकार कर रहा है, लेकिन इमाम की इबादत का आलम यह है कि इमाम को असलन खबर नहीं कि घर में क्या हुआ। दूसरी चीज़ के जो शहीद अपनी किताब में इमाम की सीरत में ज़िक्र करते हैं, वो इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। इमाम अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते थे। हमेशा उनकी कोशिश ये रही है कि उनसे मोहब्बत का इजहार करें और उनकी हाजात को, उनकी ज़रूरियात को पूरी करें। शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नाकल करते हैं इस मोहब्बत के ज़ुमरे में, वो ये कि एक दिन इमाम ने देखा कि चंद जुज़ाम के मरीज़ वो बैठे हैं, इमाम ने देखा कि उनको भूख लगी है, तो इमाम उनके करीब गए, उनसे मोहब्बत का इजहार किया, अपने घर लेकर आए और उनको खाना खिलाया। हालांकि आप जानते हैं कि यह जुजाम की बीमारी एक मुसरी बीमारी है, हर इंसान इस मरीज से भागता है, कोशिश करता है कि वो इसके करीब ना जाए, चूंकि बीमारी लग जाएगी, सिरायत कर जाएगी इसकी तरफ, लेकिन इमाम ने उसकी परवाह न की, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और उनको खाना खिलाया। तीसरी चीज़ के जो शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो है खिदमत। इमाम अलैहिस्सलाम की हमेशा कोशिश ये रही है कि वो अवामुन्नास की खिदमत करें, उनकी मुश्किलात को हल करें। इमाम अलैहिस्सलाम जब भी हज के सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो हमेशा उनकी ये कोशिश होती कि ऐसे कारवान व ऐसे काफ़िले के साथ सफ़र करें कि उनमें से कोई भी इमाम को ना जानता हो, क्योंकि अगर कोई जानता होगा उस काफ़िले में इमाम को, तो इमाम जिस तरीके से खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, उस तरीके से करने नहीं दिया जाएगा। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि इमाम ने एक ऐसे काफ़िले की तलाश की कि जो हज पर जा रहा था और उनमें से कोई भी इमाम को नहीं जानता था, तो रास्ते में इमाम ने उनकी बहुत खिदमत की, हत्ता वो चूंकि नहीं जानते थे इमाम को, उन इमाम को हुक्म भी देते थे कि आप ये करो वो करो, ये चीज़ लेकर आओ, तो इमाम उनके उन अहकामात को बेजा लाते थे, उनका ख्याल रखते थे, हर चीज़ उनको मुहैया करते थे। रास्ते के अंदर इस काफ़िले का टकराव चंद लोगों से हुआ, वो काफ़िले वाले उन चंद लोगों को जानते थे, वो दूसरे लोग जो इस काफ़िले के साथ मिले आकर, जब उन्होंने देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम एक आम आदमी की तरह इस काफ़िले की खिदमत में मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने काफ़िले वालों से पूछा कि तुम जानते हो कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं मालूम ये बुजुर्गवार शख्सियत कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि ये इंतहाई मेहरबान और खिदमत गुजार शख्सियत है। तो उस वक्त दूसरे लोगों ने इन काफ़िले वालों को बताया कि ये फ़र्जंदे रसूल है, ये इमाम सज्जाद व इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। तो सुनना था, तमाम काफ़िले वाले इमाम की पाँव में जा गिरे और माजरत करने लगे। तो इमाम ने फिर दूसरे लोगों को बताया कि मैं इसीलिए उस काफ़िले में सफ़र नहीं करता कि जो मुझे जानते हों, क्योंकि अगर जानने वालों के साथ सफ़र करूं तो वो खिदमत का मौका नहीं देते। इस किस्म का जज्बा था इमाम का अवाम की खिदमत करने का। चौथा अंसर या चौथी चीज़ जो इमाम की सीरत के अंदर शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं, वो उनकी दुआ और गिरिया और रोना है। जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का ज़माना करबला के बाद से शुरू हुआ और बनी उमैया ने इमाम को इंतहाई सख्तियों में रखा, बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती थी कि वो कोई भी फ़ालियत व एक्टिविटी अंजाम दें। और दूसरी तरफ से बनू उमैया की कोशिश ये रही है कि वो करबला को लोगों के जहनों से निकाले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को भुला दे और लोगों को भी भुलाने पर मजबूर करे। बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करते थे इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देने के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम को चूंकि इज्तिमाई कामों की इजाज़त नहीं थी, किसी भी किस्म की फ़ालियत करने की इजाज़त नहीं थी, तो इमाम ने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि दुश्मन भी उसको नहीं रोक सकता था, और वो था इमाम का गिरिया करना। इमाम जहां कहीं भी जाते, किसी दुकान पर जाते, बाजार से गुजर रहे होते, गली कूचों में से गुजर रहे होते, घर में मौजूद होते मेहमानों के सामने, तो हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रोया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि एक फर्जंदे रसूल जब वो बाजार से गुजर रहा हो, किसी दुकान पर सौदा ले रहा हो, किसी जगह पर मौजूद हो और वो गिरिया कर रहा हो, रो रहा हो जारो कतार, तो हतमन देखने वाला सवाल करता है कि आप क्यों रो रहे हैं। तो इमाम फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को बयान करते थे। इस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ज़िंदा रखा और दुआ का एक सिलसिला शुरू किया कि उन दुआओं के ज़रिए लोगों की हिदायत की, कि उन दुआओं का मजमुआ आज सैफ़ सज्जादिया के नाम से हमारे दरमियान मौजूद है। और मैं तकाजा करूंगा तमाम मोमिनीन हजरात से और तमाम उन लोगों से भी कि जो अगरचे शिया नहीं हैं लेकिन मुहिब अहले बैत हैं, वो इमाम के इस दुआओं के मजमुआ का हतमन मुताला करें। इसके अंदर बेहतरीन अंदाज में इमाम ने मआरिफ को जिक्र किया है, तौहीद से लेकर माद तक और तमाम ज़िंदगी के पहलुओं को, चाहे वो इंसान का फैमिली मैटर हो, चाहे इंसान का वो फर्दी मैटर हो, या कोई दोस्ती के हवाले से हो, या इंसान की इस कायनात के साथ मुर्तबित कोई मसला हो, तमाम चीज़ों को इमाम ने दुआ के रंग में पेश किया है। जैसा कि अर्ज़ किया था कि इमाम की ज़िंदगी में बहुत से पहलू मौजूद हैं कि जिन पर रोशनी डालनी चाहिए, लेकिन महदूदियत वक्त और महदूदियत किताब की वजह से हम कासिर हैं कि उन तमाम को बयान करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।